नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अपने चंचल मन को सीधा करें। फंदनम चपलम चित्तम दूरखम दुर्निवारयम उजुम करोति मेधावी उसुकारो व तेजनम वारिजो वोथलेखितो ओक मोकत उभतो परिफंदतिदम चित्तम मार धेयम पहातवे। चित्त जो चंचल है, चपल है, कठिनता से संरक्षित होता है तथा कठिनता से जिसका निवारण होता है उसे मेधावी व्यक्ति वैसे ही सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को, जैसे जल से निकालकर धरती पर फेंकी गई मछली तड़फड़ाती है वैसे ही मार के फंदे से निकलने के लिए यह चित्त तड़फड़ाता है। धम्मपद गाथा 33 और 34। आचार्य के परामर्श के पालन का महत्व। बुद्ध ने यह शिक्षा मेघीय थेर के संदर्भ में दी जब वे चालिक पर्वत पर रह रहे थे। मेघीय बुद्ध के परिचर के रूप में काम करने वाले 8वें भिक्षु थे तथा उनके बाद बुद्ध के चचेरे भाई आनंद ने बुद्ध के शेष जीवन पर्यंत परिचर के रूप में उनकी सेवा की तथा विशिष्टता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। एक अवसर पर जब मेघीय अभी भी उनके परिचर थे, भिक्षा लेकर वापस आए तथा जंतुगाम के निकट किमिलाल नदी के किनारे गए। वहां उन्होंने एक आम का बगीचा देखा तथा सोचा कि यह स्थान उनके ध्यान लगाने के लिए उपयुक्त होगा। वे बुद्ध के पास वापस लौट आए तथा उस आम के बगीचे में ध्यान लगाने के लिए अनुमति का अनुरोध किया। बुद्ध ने उत्तर दिया, मेघीय कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें, जब तक कोई अन्य भिक्षु न आ जाए तब तक प्रतीक्षा करें, मैं अकेला हूँ। किंतु मेघीय ने उसी बात के लिए 3 बार अनुरोध किया। अंत में बुद्ध ने कहा, चूंकि आप बार बार प्रयास करने की बात कर रहे हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेघीय आप जो चाहें करें। तो मेघीय बुद्ध को अकेला छोड़कर उस आम्रकुंज में चले गए। जब वे ध्यान लगा रहे थे तो उनके मन में 3 प्रकार के अकुशल विचार आए, कामुक विचार, द्वेषपूर्ण विचार तथा क्रूर विचार। मेघीय ने सोचा, यह बहुत अजीब बात है, जब मैंने इतने विश्वास के साथ संसार त्याग किया है तो मुझे क्यों ऐसे दूषित अकुशल विचारों से ग्रसित होना चाहिए। तथा वे बुद्ध के पास लौट आए और उन्होंने सूचित किया, भंते जब मैं आम्रकुंज में ध्यान लगा रहा था तो 3 प्रकार के अकुशल विचार मेरे मन में उत्पन्न हुए, कामुक विचार, द्वेषपूर्ण विचार तथा क्रूर विचार। ऐसा था कि पिछले जन्म में मेघीय उस आम्रकुंज में रहने वाले एक राजा थे तथा चूंकि वहां उनका एक स्त्री गृह अर्थात अंतःपुर या हरम था, उनके मन को कामुक विचार ग्रसित करने लगे तथा राजा के रूप में उन्होंने अपराधियों को प्राणदंड का आदेश दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप घृणा से भरे क्रूर विचार उन्हें ग्रसित कर रहे थे। बुद्ध ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने उन्हें बगीचे में जाने से रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वे इस अविवेकी कार्य को करने पर अड़ गए थे। मुक्ति के लिए प्रथम अनुकूल परिस्थिति, अच्छा मित्र। तब बुद्ध ने वह गाथा सुनाई जिसे हमने उद्धृत किया है। तथा एक प्रवचन दिया। इस प्रवचन में उन्होंने मन की मुक्ति, पाली में चेतो विमुक्ति, के लिए पांच अनुकूल परिस्थितियों के विषय में मेघीय को निर्देश दिए। ये हैं: एक, अच्छा मित्र; दो, एक नैतिक जीवन; तीन, शिक्षाओं को सुनना; चार, धम्म या उपदेशों के अनुसार साधना करना; तथा अंत में पांच, अंतर्दृष्टि या प्रज्ञा की प्राप्ति। एक अच्छा मित्र वह है जिसकी वाणी उचित हो, जिसकी उपस्थिति में वह सुनने को मिलता हो जो कभी सुना न गया हो, जो पहले से सुना है उसे वह संशोधित करता है, संदेह से मुक्ति दिलाता है, जो किसी की सोच को ठीक करता है, तथा जो श्रद्धा के विकास में सहायक होता है। अर्थात यह वह है जो हमें श्रद्धा, नैतिकता, अध्ययन, उदारता एवं ज्ञानोपार्जन में प्रशिक्षित करता है। निसंदेह सबसे अच्छे मित्र स्वयं बुद्ध हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है, चूंकि मैं एक अच्छा कल्याण मित्र हूँ, जीवित प्राणी जो जन्म के अधीन है वे स्वयं को जन्म से मुक्त करने में सक्षम हो पाते हैं। बुद्ध हमारे लिए हमारा ध्यान भले न लगा पाए, किंतु हम उन्हीं के कारण यह सीख पा रहे हैं कि हमें साधना कैसे करनी है, तथा उन्हीं के कारण एवं उनके उन अनुयायियों के कारण जो उनकी शिक्षा के अनुसार काम करते हैं, हम प्रगति के लिए आवश्यक सुरक्षा एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर पा रहे हैं। हमने पहले ही कल्याण मित्र के रूप में ध्यान के आचार्य के विषय में विशुद्ध मार्ग से उद्धरण दिया है। बुद्ध से प्रारंभ कर नीचे उतरते हुए सबसे अच्छा वह कौन व्यक्ति है जिसके पास ध्यान लगाना सीखने के लिए जाना चाहिए? वह आचार्य जो ग्रंथों को जानता है, परंपरा का पालन करता है, विरासत की रक्षा करता है, तथा जो अपनी राय के बजाय अपने आचार्य के मत का अनुसरण करता है। ज्योतिपाल की कथा। स्वयं बुद्ध के एक अच्छे मित्र थे जिन्होंने उनके अतीत के जन्मों में से एक जन्म में उनकी सहायता की थी। उस जन्म में उनका नाम ज्योतिपाल था तथा वह उनके पहले के बुद्ध काश्यप, पाली में काश्यप बुद्ध का समय था। ज्योतिपाल को काश्यप बुद्ध से नियत विवरण अर्थात अंतिम सुनिश्चित भविष्यवाणी प्राप्त करनी थी। उनके मित्र घटिकर ने सुझाव दिया कि वे बुद्ध के दर्शन के लिए चलें, किंतु ज्योतिपाल ने कहा, किसी मुंडित भिक्षु से कौन मिलना चाहता है, तथा उस प्रतिकूल टिप्पणी से संबद्ध दूषित संस्कार अर्थात मानसिक इच्छा शक्ति के कारण जब वे बोधिसत्व सिद्धार्थ हुए तो उन्हें अपनी पूर्ण जागृति के लिए 6 वर्षों तक काम करना पड़ा। यदि उन्होंने वैसा न कहा होता तो उनकी उपलब्धि शीघ्र हो गई होती। ज्योतिपाल के मित्र ने निर्णय लिया कि उन्हें यथोचित बुद्धिसम्मत बनाना पड़ेगा, भले ही इसके लिए धृष्ट होना पड़े। अतः जब वे नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने ज्योतिपाल के सिर के बाल पकड़कर उन्हें धमकाया कि यदि उन्होंने काश्यप बुद्ध के दर्शन के लिए जाने से मना कर दिया तो वे उन्हें डुबो देंगे, और इससे काम बन गया। देवदत्त एवं अजात शत्रु की कथा। अनुचित प्रकार के मित्र से हमें अत्यंत दुख हो सकता है। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त एक भिक्षु थे जिन्होंने पहले बहुत परिश्रम किया तथा यद्यपि उन्होंने कोई फल पद नहीं प्राप्त किया, किंतु समाधि या ध्यान, पाली में ध्यान पदों को अवश्य विकसित किया। वे इतने अच्छे भिक्षु थे कि बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक आदरणीय सारिपुत्र, पाली में सारिपुत्र, ने उनकी अत्यधिक प्रशंसा की, किंतु वे महत्वाकांक्षा से ग्रसित हो गए तथा उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें संघ समुदाय का प्रमुख बनना है। उन्होंने बुद्ध को संघ समुदाय के अध्यक्ष के रूप में देखा तथा सोचा कि यह भूमिका किसी और को भी पारित की जा सकती है। जब बुद्ध ने देवदत्त को संघ का प्रमुख बनाने से मना कर दिया तो उन्होंने यह पद बल द्वारा प्राप्त करने का निर्णय लिया। देवदत्त राजा बिंबिसार के पुत्र, राजकुमार अजातशत्रु, पाली में अजातशत्रु के मित्र थे तथा उन्होंने राजकुमार से कहा कि वे अपने पिता की हत्या कर सिंहासन ग्रहण कर लें एवं देवदत्त बुद्ध की हत्या कर संघ ग्रहण कर लेंगे। वे बुद्ध को तो नहीं मार सके, यद्यपि उन्होंने कई प्रकार के प्रयास किए, जिसमें बुद्ध पर एक बड़ी चट्टान गिराना, उनके विरुद्ध एक जंगली हाथी भेजना तथा उन पर बाण चलाने के लिए तीरंदाजों को भेजना सम्मिलित था, किंतु अजातशत्रु ने अपने पिता की अवश्य हत्या कर दी। तो पिता का वध 5 प्रमुख अपराधों में से एक है, जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ यह है कि अगले ही जीवन में निम्नतम नरक में पुनर्जन्म तथा एक अविश्वसनीय लंबी अवधि का वह जीवन। अतः अपने मित्र के कारण अजातशत्रु अपरंपार दुख भोग रहे हैं, किंतु वास्तव में अजातशत्रु की पीड़ा ने प्रारंभ होने के लिए अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं की। उनका अंतर्मन स्वच्छ नहीं था। सम्राट बनने के बाद एक पूर्णिमा की संध्या को अजातशत्रु बुद्ध के दर्शन के लिए गए तथा उस आम्रकुंज में पहुंचने पर, जहां बुद्ध अनेक भिक्षुओं के साथ ध्यान में बैठे थे, वे चिंतित हो गए क्योंकि वहां कोई ध्वनि नहीं थी। उन्होंने सोचा कि इसका अर्थ है कि उनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र है तथा जब उन्होंने बुद्ध का उपदेश सुना तो वे उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए क्योंकि वे अपनी चिंताओं से विचलित हो गए थे। उनके जाने के बाद बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा कि यदि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या न की होती तो वह धर्मोपदेश उनके सोतापन्न होने के लिए पर्याप्त हुआ होता। द्वितीय आवश्यकता नैतिकता। तो हम मन को मुक्ति दिलाने के लिए दूसरी अनुकूल स्थिति नैतिकता की ओर आते हैं। यदि कोई भिक्षु है तो संघ के मार्गदर्शन के लिए बुद्ध द्वारा निर्धारित नियम अर्थात पातिमोक्ष हैं। किसी भिक्षु या भिक्षुणी को देखना चाहिए कि छोटा से छोटा अपराध करने में भी क्या खतरा है तथा हम गृहस्थ जनों को स्थायी रूप से पंचशील अर्थात 5 शिक्षा पदों के पालन का महत्व समझना चाहिए तथा विशेष दिवसों पर अथवा साधना शिविर में भाग लेते समय 8 शिक्षा पदों का। तीसरी आवश्यकता धम्म प्रवचन सुनना। तीसरी गुणवत्ता जो हमें मुक्ति के लिए तैयार करती है वह है बुद्ध की शिक्षा के विषय में प्रवचन सुनना। बुद्ध ने दानव आलवक को बताया था कि ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग धम्म पर प्रवचन सुनना था। इसमें हम धम्म पर पुस्तकें पढ़ना भी सम्मिलित कर सकते हैं। हम इससे एक अच्छा सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे तथा इससे हमें साधना के लिए प्रेरणा मिलेगी और हमें बेहतर काम करने में सहायता प्राप्त होगी। कई बार कोई प्रवचन सुनने से या कोई धम्म साहित्य पढ़ने से अपने पिछले अनुभवों को समझने में सहायता मिल सकती है। कभी कभी आपको कोई विशेष प्रवचन अरुचिकर या उबाऊ लगेगा, फिर जब आप अभ्यास द्वारा कुछ अनुभव प्राप्त कर लेते हैं तो वही प्रवचन अचानक जीवित या स्पष्ट हो जाएगा। पहले जो नीरस सिद्धांत प्रतीत होते थे वे ही वास्तविक लगने लगेंगे। यहाँ इसमें हम सम्यक वाणी भी सम्मिलित कर सकते हैं। बुद्ध ने मेघियों को बताया कि ऐसी 10 प्रकार की वाणी है जो ध्यानात्मक मन को उन्मुक्त करने के लिए उपयुक्त होती है। वाणी जो दोषों का अत्यधिक ह्रास करती है तथा निर्णायक रूप से सांसारिक मोह माया से मुख मोड़ लेने के लिए अनुकूल होती है एवं जो निष्काम भाव की ओर निरोध की ओर मन की शांति की ओर उच्च बुद्धिमत्ता की ओर और अंत में पूर्ण जागृति या निर्वाण पाली में निर्वाण की ओर ले जाती है। जब हमने अष्टांगिक आर्य मार्ग के एक भाग के रूप में सम्यक वाणी के विषय में बात की थी तो हमने कई प्रकार की वाणी का उल्लेख किया था जिनके प्रयोग से बचना चाहिए। यहाँ हम सम्यक वाणी के अधिक सकारात्मक पक्ष को देख सकते हैं। बुद्ध ने बताया कि कम इच्छा के बारे में बात करना, संतोष के बारे में बात करना, एकांत जो कि शारीरिक या मानसिक एकांत हो सकता है तथा उच्चतम एकांत निर्वाण हो सकता है के बारे में बात करना, अकेले रहने के बारे में बात करना, सम्यक प्रयास करने के बारे में बात करना, नैतिकता के बारे में बात करना, समाधि या एकाग्रता के बारे में बात करना, पया विवेक या समझ के बारे में बात करना, उद्धार या विमुक्ति पाली में विमुक्ति अर्थात निर्वाण या आर्य फल की मनोदशाओं के बारे में बात करना तथा अंत में विमुक्ति ज्ञान दर्शन पाली में विमुक्ति ज्ञान दर्शन अर्थात भूत लक्षी ज्ञान या प्रत्यवेक्षण ज्ञान पाली में पच्चावेक्षण ज्ञान के बारे में बात करना, समाधि या ध्यान पाली में ध्यान पद को अथवा जागृति के चार चरणों में से किसी भी चरण के मार्ग या फल पद को प्राप्त कर लेने के तत्काल पश्चात प्रत्यवेक्षण ज्ञान उत्पन्न होता है। उदाहरण स्वरूप फल पद के पश्चात साधक सिंहावलोकन द्वारा मार्ग पद फल पद परित्यक्त दोष शेष दोष यदि कोई बचा है तथा परिप्रेक्ष्य में निब्बान देखता है। चौथी आवश्यकता धम्म का अभ्यास। मन की मुक्ति के लिए चौथी अनुकूल गुणवत्ता धम्म की साधना है। इसका अर्थ है ध्यान के माध्यम से एकाग्रता प्राप्त करने के लिए साधना साधक को प्रयास करना चाहिए तथा सभी अहितकर मनस्थितियों के निर्मूलन के लिए एवं हितकर मनस्थितियों की प्राप्ति के लिए दृढ़ता पूर्वक कार्य करना चाहिए। उसे अपने प्रयास में दृढ़ होना चाहिए तथा हितकर मनस्थितियों के अभ्यास से वंचित नहीं होना चाहिए। बुद्ध ने कहा है कि केवल ऊर्जावान ही दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बारंबार प्रयास के पश्चात ही सफलता प्राप्त होती है। पांचवी आवश्यकता अंतर्दृष्टि। अंत में मन की मुक्ति के लिए पांचवी गुणवत्ता अंतर्दृष्टि या विवेक है अर्थात वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप को वास्तव में समझना। यह केवल विपश्यना के माध्यम से संभव है। मात्र विपश्यना से ही वह विवेक उत्पन्न होता है जिससे प्रक्रियाओं के उदय एवं विनाश का प्रभेद ज्ञात हो। मात्र विपश्यना ही दोषों को नष्ट करती है। मात्र विपश्यना ही दुख की संपूर्ण एवं अंतिम समाप्ति की ओर अर्थात निर्वाण की ओर ले जाती है। बुद्ध ने मेघिय को यह बताते हुए बहुत स्पष्ट कर दिया कि इन गुणों के विकास को निम्न विधियों से पूरा करना चाहिए। एक, शरीर के घृणास्पद पहलू की भावना द्वारा कामोन्माद या राग का उन्मूलन। यह भिक्षुओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिन्हें गृहस्थ व्यक्तियों से अधिक गंभीरता एवं पूर्णता के साथ कामुक इच्छाओं का सामना करना होगा तथा उन पर प्रभुत्व स्थापित करना होगा। दो, व्यक्ति को मैत्री भावना पाली में मेत्ता भावना करनी चाहिए तथा द्वेष या व्यापार के उन्मूलन के लिए उसे विकसित करना चाहिए। तीन, तब साधक को आन एवं अपान के संज्ञान या सति पर कार्य करना चाहिए जिससे कि विचारों की अवधारणा अर्थात वितर्क पाली में वितर्क का दमन हो सके अर्थात विचारों को पकड़ना, उन पर ध्यान देना। चार, साधक को अहम के दंभ अस्मिमान का उन्मूलन करने के लिए नश्वरता अर्थात अनित्य, पाली में अनिच्य के लक्षण की भावना करनी चाहिए। बुद्ध ने कहा, मेघिय, जो नश्वरता या अनिच्य का विशिष्ट लक्षण साकार करता है वह स्वतः अनात्म का विशिष्ट लक्षण आत्मसात करता है। जो अनात्म का विशिष्ट लक्षण आत्मसात करता है वह मैं हूँ अस्मिमान की अवधारणा का उन्मूलन कर इसी जीवन में निब्बान उपलब्ध करता है। अपने प्रवचन के समापन पर बुद्ध ने वह गाथा दी जिसको हमने इस प्रवचन के प्रारंभ में उद्धृत किया है। फंदनम चपलम चित्तम दूरखम दुर्निवारयम उजुम करोति मेधावी उसुकारो व तेजनम वारिजो वथलेखित्थो ओकमोकत उभतो परिफंदतिदम चित्तम मारधेयम भातवे। चित्त जो चंचल है, चपल है, कठिनता से संरक्षित होता है तथा कठिनता से जिसका निवारण होता है उसे मेधावी व्यक्ति वैसे ही सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को। जैसे जल से निकालकर धरती पर फेंकी गई मछली तड़फड़ाती है, वैसे ही मार के फंदे से निकलने के लिए यह चित्त तड़फड़ाता है। धम्मपद गाथा 33-34। बुद्ध द्वारा मेघिय को दिए गए परामर्श पर हम कितने खरे उतरते हैं। यहाँ हम अच्छे मित्रों से संबद्ध हैं जो बुद्ध के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। हम नैतिकता विकसित कर रहे हैं। हम धम्म पर प्रवचन सुनते हैं। हम एकाग्रता के विकास का अभ्यास करते हैं तथा हम अंतर्दृष्टि विकसित कर रहे हैं। अतः हम पांच में से पांचों के पात्र हैं। अनाथ, पाली में अनत्ता। अब हम लौकिक स्थितियों की तीसरी विशेषता अनत्ता, किसी प्रकार की शाश्वत आत्मा का अभाव, अहम का अभाव, अनियंत्रणीय पहलू को विस्तार से देखते हैं। अस्तित्व की भौतिक या मानसिक घटनाओं में या उनके बाहर परम अर्थ में कोई भी आत्मनिर्भर अहम या आत्मा, कोई स्थायी पदार्थ नहीं पाया जा सकता है। यही बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है। जब तक यह बात समझ में नहीं आती तब तक बौद्ध धर्म का कोई वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाता। इस समझ के बिना हम सोचते हैं कि हमारा व्यक्तित्व दुख भोगता है, कि हमारा व्यक्तित्व अच्छे एवं बुरे कार्य करता है तथा उन कृत्यों के परिणाम अनुभव करेगा, कि हमारा व्यक्तित्व अष्टांगिक आर्य मार्ग पर चलता है, कि हमारा व्यक्तित्व निब्बान में प्रवेश करेगा। पाली में अनत्ता शब्द अन एवं अत्ता को जोड़कर बना है। अन निषेध का संकेत है तथा अत्ता का साधारण अर्थ सार या आवश्यक पदार्थ होता है। बुद्ध ने स्पष्ट किया है कि भाषा के दो स्तर होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में पारंपरिक भाषा का प्रयोग करते हैं तथा एक भाषा वह भी है जो परम सत्य के अनुरूप है। यह दूसरे प्रकार की भाषा अतीव परिशुद्ध होती है तथा इसे अत्यंत सटीक एवं अचूक होना चाहिए। पाली ग्रंथों के तीसरे भाग अभिधम्म, जिसका अर्थ है परम सत्य, में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग है। हमें उन ग्रंथों में व्यक्ति का उल्लेख नहीं मिलेगा अपितु उसके स्थान पर शारीरिक एवं मानसिक घटनाओं की प्रक्रिया का। प्रवचनों के संग्रह सूत्र पाली में सूत्र के अनेक ग्रंथों में भी इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग है जो मात्र मूलभूत को संबोधित करती है। किंतु बुद्ध ने सत्य के विषय में पारंपरिक भाषा का भी उपयोग कर उपदेश दिया था तथा उन्होंने यह अच्छी तरह स्पष्ट भी किया कि कोई उनकी बात का गलत अर्थ न लगाए। मैं के स्थान पर इस शारीरिक मानसिक घटना प्रक्रिया जैसे शब्दों का प्रयोग यदि वे सामान्य लोगों को दिए गए उपदेशों में करते तो यह अत्यंत असुविधाजनक हुआ होता। किंतु बुद्ध ने कहा कि जब भी उन्होंने मैं, मुझे या मेरा जैसे शब्दों का प्रयोग किया, उनके लिए उनके मन में कोई ऐसा अनुचित विचार नहीं था कि किसी नियंत्रणकारी स्थायी स्वयं का अस्तित्व है। यथापि अंग संभारा होति शब्दो रथो इति एवं खंधेषु संतेषु होति सत्तोति सम्मति। जैसे पुरुषों के समागम से रथ शब्द अभिव्यक्त होता है, उसी प्रकार जब स्कंध विद्यमान होते हैं तो सामान्य भाषा में उसे व्यक्ति कहा जाता है। आचार्य बुद्ध घोष लिखते हैं कि जब धुरियां, पहिए, ढांचे आदि घटक पुर्जे जुड़ते हैं तो हम उसे एक रथ कहते हैं, किंतु मूलभूत अर्थ में कोई भी भाग रथ नहीं है। जब विभिन्न सामग्रियां सही तरीके से किसी रिक्त स्थान को घेरती हैं तो हम उसे एक घर कहते हैं। जब उंगलियों एवं अंगूठे को एक निश्चित तरीके से नियोजित किया जाता है तो हम उसे एक मुट्ठी कहते हैं। उसी प्रकार जब पंच स्कंध अर्थात भौतिक रूप, संवेदना, संज्ञा, संस्कार तथा चेतना या विज्ञान एकजुट होते हैं तो हम उसे सामान्य भाषा में एक व्यक्ति या एक प्राणी कहते हैं। किंतु अंतिम अर्थ में यदि प्रत्येक घटक की अलग अलग जांच की जाए तो मैं या मैं हूँ की पूर्व धारणा का कोई आधार नहीं है। आदरणीय लेगी सयोदो ने कहा है कि शाश्वत आत्मा की मिथ्या धारणा को दूर करने के लिए अंतर्दृष्टि द्वारा अनत्ता का ज्ञान आवश्यक है। यदि हम ऐसा करना चाहते हैं तो नश्वरता या अनिच्च का अंतर्दृष्टि ज्ञान विकसित करना आवश्यक है, क्योंकि जब नश्वरता का अच्छा ज्ञान हो जाता है तो अनात्म की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना सरल हो जाता है। दुख का अंतर्ज्ञान पूरी तरह प्राप्त होने में और समय लगता है, तथा यही कारण है कि मुक्ति प्राप्त करने के चार चरण हैं, क्योंकि अरहत्व पद न प्राप्त होने तक सूक्ष्म लालसा एवं दंभ बने रहते हैं। जिन लोगों ने ऐसे समय का साक्षात्कार किया है जिसमें बुद्ध के शिक्षण उपलब्ध हैं, उनके लिए आवश्यक है कि वे निम्नतर लोकों में पुनर्जन्म की पीड़ा से बचने के लिए अब काम करें। जब बुद्ध की शिक्षा नहीं उपलब्ध होती तो इसके लिए काम करना संभव नहीं हो पाता। अतः हमें अनात्म का अंतर्दृष्टि ज्ञान प्राप्त करने के क्रम में नश्वरता पर मनन या ध्यान करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारे काम करने के लिए मुख्य बात ज्ञान की परिपक्वता है। यदि हमारा ज्ञान परिपक्व है तो कोई प्रवचन सुनते समय या साधारण गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए भी नश्वरता की अंतर्ज्ञान प्राप्ति संभव हो सकती है। लेदी सयोदो ने आगे कहा, जिसका ज्ञान विकसित हो गया है उसके लिए अपने स्वयं के भीतर की या बाहर की, अपने घर के भीतर की या बाहर की, अपने गांव या शहर के भीतर की या बाहर की, प्रत्येक वस्तु ऐसा विषय है जिसके साक्षात्कार से नश्वरता की अंतर्दृष्टि की उत्पत्ति एवं विकास हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि हम अभिधर्म ग्रंथों का अध्ययन कर आंख की एक झपक के दौरान असंख्य बार होने वाली क्षणिक मृत्यु पर विचार करें। ध्यान के माध्यम से हम स्वयं के शरीर में होने वाले आमूल तथा सूक्ष्म परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। बौद्ध धर्म में अनत्ता का सत्य मौलिक है तथा समझने की दृष्टि से यह शिक्षा का सबसे कठिन भाग भी है। यहाँ तक कि यदि हमें भले ही स्पष्ट सैद्धांतिक समझ हो तब भी हम मैं, मुझे, मेरा की सोच के साथ विचार या कार्य करते हैं। जब हम नश्वरता या अनिच्च को सभी भौतिक एवं मानसिक घटनाओं के त्वरित उदय एवं विलय के बोध के माध्यम से समझते हैं, तभी हम वास्तव में अनत्ता को समझते हैं। इसके पहले कि हम स्वयं के अनुभव के माध्यम से यह जाने, हमें अपने आप को इस पर विश्वास करने के लिए मजबूर करना आवश्यक नहीं है। यदि हम अपने आप को विश्वास करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं तो इससे केवल संघर्ष उत्पन्न होगा तथा आगे साधना करना और कठिन हो जाएगा। इसीलिए हमने सयाजी उबाखी को उद्धृत किया था, जिन्होंने कहा था कि उनके मार्गदर्शन में काम करने वाले किसी भी शिष्य से यह आशा नहीं की जाती। उन्होंने कहा, जब आप देखेंगे तब आप विश्वास करेंगे। विश्वास के विषय पर कालामाओं को प्रवचन। बुद्ध के समय में गृहस्थों के एक समूह ने बुद्ध से पूछा कि यह कैसे पता करें कि किस पर विश्वास करना चाहिए। केशमुत्ति सूत्र में उपलब्ध इस कथा को आइए अधिक विस्तार से देखें। बुद्ध भिक्षुओं के एक विशाल शिष्य वर्ग के साथ कौशल राज्य के जनपदों में चारों ओर जा रहे थे। वे कालामाओं के बाजारू शहर केशपुत्र पहुंचे। कालामा बुद्ध के विषय में सुन चुके थे कि वे संपूर्ण रूप से जागृत, प्रशिक्षक बुद्ध, ज्ञान संपन्न तथा समुचित आचरण युक्त, संपूर्ण विश्व के ज्ञाता, मनुष्यों के अद्वितीय प्रशिक्षक, मनुष्यों, देवताओं एवं ब्रह्माओं के प्रशिक्षक, जागरूक एवं तेजवान थे। उन्होंने स्वयं ही परम सत्य का अनुभव कर लिया था तथा वे इस लोक के साथ साथ देवताओं, मारों, ब्रह्माओं के लोक के एवं भिक्षुओं, ब्राह्मणों, देवताओं और मनुष्यों के समुदायों के भी ज्ञाता थे। वे ऐसे धर्म का उपदेश देते थे जो अर्थ में समृद्ध है, जो प्रारंभ में अच्छा, मध्य में अच्छा तथा अंत में अच्छा है। उन्होंने वह उच्च साधना सिखाई जो परिपूर्ण, संपूर्ण एवं शुद्ध है। बुद्ध की ऐसी प्रतिष्ठा थी। तो कालामा बुद्ध के पास इस आशा के साथ गए कि वे उनके लिए एक प्रश्न का स्पष्टीकरण करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा, भंते, ऐसे अनेक भिक्षु तथा ब्राह्मण हैं जो केशपुत्र में आते हैं। वे अपने अपने विचारों को समझाते हैं तथा उनकी व्याख्या करते हैं एवं दूसरों के विचारों पर घृणा और अवमानना के साथ छींटाकशी करते हैं। तब अन्य भिक्षु एवं ब्राह्मण आते हैं जो अपने विचारों की शिक्षा देते हैं तथा दूसरों के विचारों पर आक्षेप करते हैं। अतः हमें इन विचारों के बारे में संदेह है, हम उनके बारे में अनिश्चित हैं। कौन सच बोलता है और कौन झूठ बोलता है? बुद्ध ने उत्तर दिया कि उनका संदेह उचित कारणों से है। उन्होंने कहा, एथ तुम्हें कालामा, मा अनुस्सवेन, मा परंपराया, मा इति किराया, मा पिटक संपदानेन, मा तक हेतु, मा नय हेतु, मा आकार परिवितक्केन, मा दिठ्य निज्ञान खंथिया, मा भव रूपताया, मा समणो नो गरुति। हे कालामाओ, आओ, तुम किसी बात को केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात अनुसूत है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात परंपरागत है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात इसी प्रकार कही गई है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह हमारे धर्म ग्रंथ पिटक के अनुकूल है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह तर्कसंगत है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह न्याय अर्थात शास्त्र संगत है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि आकार प्रकार सुंदर है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह हमारे मत के अनुकूल है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि कहने वाले का व्यक्तित्व आकर्षक है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि कहने वाला श्रवण हमारा पूज्य है। यदा तुम्हें कालामा अत्तनाव जानया, इमे धम्मा अकुशला, इमे धम्मा सावज्जा, इमे धम्मा वियुग रहिता, इमे धम्मा समत्ता समादिन्ना अहिताय दुखाय संवत्तंतीति। अथ तुम्हें कालामा पजहे याथ। हे कालामाओ, जब तुम आत्मानुभव से अपने आप ही यह जानो कि ये बातें अकुशल हैं, ये बातें सदोष हैं, ये बातें विज्ञ पुरुषों द्वारा निंदित हैं, इन बातों के अनुसार चलने से अहित होता है, दुख होता है, तो हे कालामाओं तुम उन बातों को छोड़ दो। तथा प्रश्नोत्तरों के माध्यम से उन्होंने कालामाओं को समझाया कि जब किसी व्यक्ति में लोभ उत्पन्न होता है तो वह उसकी हानि करेगा। लोभ युक्त व्यक्ति जब लोभ से इतना मनोग्रहित एवं ग्रसित हो जाता है कि वह प्राणियों की हिंसा, चोरी तथा व्यभिचार करता है और झूठ बोलता है तथा इस तरह के कृत्य करने के लिए अन्य लोगों से आग्रह करता है, तो इससे उसे लंबे समय तक हानि एवं दुख होगा। बैर भाव के कारण ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्ति को भी इसी प्रकार एक लंबे समय तक भुगतना होगा। अज्ञानता के कारण किए गए अनुचित कृत्यों के परिणाम भी वही हैं। तत्पश्चात बुद्ध ने कालामाओं को समझाया कि जब व्यक्ति में लोभ अनुपस्थित होगा तब वह जीव हत्या, चोरी या व्यभिचार नहीं करेगा तथा झूठ नहीं बोलेगा एवं वह ऐसा करने के लिए दूसरों से कहेगा नहीं, यह उसके लिए अच्छा होगा। तथा हमें इस प्रकार की बातें स्वीकार कर लेनी चाहिए जिनका हम स्वयं अनुभव करते हैं कि वे हमारे लिए अच्छी हैं, दोषहीन हैं, बुद्धिमानों द्वारा प्रशंसित हैं तथा उनके अभ्यास से आनंद एवं कल्याण होता है। इस प्रकार के आचार व्यवहार को हमें अर्जित करना चाहिए तथा अपने जीवन में हमें उन्हें अपनाना चाहिए। अतः जब लोग अनुपस्थित हो, द्वेष अनुपस्थित हो, भ्रम अनुपस्थित हो, तो अच्छे कर्म होंगे तथा उन कर्मों के अच्छे परिणाम आएंगे। तब बुद्ध ने कालामाओं को चार साधनाओं में प्रशिक्षित किया जो ब्रह्मलोक या ब्रह्म विहार की ओर ले जाती हैं। हम इनका वर्णन पहले ही कर चुके हैं। ये हैं मेत्ता, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा, पाली में उपेक्षा। बुद्ध ने कालामाओं को इस प्रकार निर्देश दिया, मनुष्य को अपने द्वेष रहित, उपेक्षा पूर्ण, प्रचुर, उत्कृष्ट, असीमित विचारों से ऊपर नीचे आर पार सभी दिशाओं में चारों ओर विश्व में सर्वत्र भरते हुए रहना चाहिए। चाहे हम कुछ भी विश्वास करें, इस साधना के परिणाम अच्छे हो सकते हैं। इससे आनंदपूर्ण उच्च लोक में पुनर्जन्म हो सकता है। यदि कोई दूसरा संसार नहीं है तथा कारण कार्य विधान नहीं है तो भी हमारा वर्तमान जीवन सुखमय होगा, क्योंकि हम शत्रुता, द्वेष एवं पीड़ा से मुक्त होंगे। यदि बुरे काम करने वालों का बुरा होता है तो वह सुखमय जीवन के प्रति आश्वस्त है, क्योंकि उसने अच्छे काम किए हैं। यदि बुरे काम करने वालों का बुरा नहीं होता तो भी वह सुखी होगा, क्योंकि उसने कुछ बुरा नहीं किया है। बुद्ध द्वारा उन्हें दिए गए प्रवचन को समझने में कालामा सक्षम थे तथा सत्य इतना स्पष्ट हो गया कि उन्होंने त्रिरत्न में शरण ली। हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि बुद्ध ने देखा कि वे अंतर्दृष्टि ध्यान के लिए अभी तैयार नहीं थे, क्योंकि अपने प्रवचन में इसका उल्लेख नहीं करते तथा अन्य प्रवचनों से हम जानते हैं कि चार ब्रह्म विहार हमें अंतर्दृष्टि ध्यान के लिए तैयार करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बुद्ध यह जानने में सक्षम थे कि उनके श्रोता क्या समझ सकते हैं तथा वे अपने प्रवचन सदैव अपने श्रोताओं के उपयुक्त देते थे। आज शाम मात्र इतना ही। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु। अब आप 7:30 बजे सायंकाल की सामूहिक साधना प्रारंभ होने तक विश्राम कर सकते हैं।